इवर आर्म स्ट्रोंग रिचर्ड्स, समय 1893 से 1979, 20वीं सदी के आलोचकों में यश और प्रभाव दोनों ही दृष्टियों से आई ए रिचर्ड्स का गौरवपूर्ण स्थान है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से आचार विज्ञान मोरल साइंस में स्नातक उपाधि पाने के बाद कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ इंग्लिश में आलोचना सिद्धांत पर भाषण देने के लिए उन्हें एकाएक निमंत्रण मिल गया। यह अवसर रिचर्ड्स के लिए एक महान अवदान सिद्ध हुआ। उनकी सभी महत्वपूर्ण कृतियां मूलतः कैम्ब्रिज ऑफ स्कूल ऑफ इंग्लिश में प्राप्त अनुभवों पर आधारित है। रिचर्ड्स बहुश्रुत हैं और मनोविज्ञान में अभिनिविष्ट हैं। स्वभावतः उनके आलोचनात्मक कृतियों में मनोवैज्ञानिक दृष्टि का प्राधान्य पाया जाता है। द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स नामक ग्रंथ के प्रकाशन 1922 से रिचर्ड्स आलोचना के क्षेत्र में उतरे। इस ग्रंथ के अन्य दो सहलेखक थे सी के ऑगडेन और जेम्स वुड, जो रिचर्ड्स के स्नातक कक्षा के सहपाठी थे। फाउंडेशन में सौंदर्य को वस्तुनिष्ठ न मानकर ग्रहिता पाठक या दर्शक पर पड़ने वाले प्रभाव के रूप में देखने का आग्रह है, अर्थात सौंदर्य की स्थिति किसी वस्तु में नहीं बल्कि दर्शक के मन पर पड़ने वाले उसके प्रभाव में होती है। ग्रहिता के मानसिक प्रभाव या प्रतिक्रिया का यह सूत्र रिचर्ड्स की सभी उत्तरवर्ती कृतियों में अनिश्चित है। वे काव्य का सौंदर्य भी काव्य में देखने के बदले उससे उत्पन्न होने वाले भाव में देखने का प्रस्ताव करते हैं। द मीनिंग ऑफ मीनिंग, अर्थ का अर्थ नामक दूसरी कृति ऑगडन और रिचर्ड्स के संयुक्त लेखकत्व में 1923 में प्रकाशित हुई। इसमें अर्थ संबंधी प्राचीन या समसामयिक मतों का खंडन कर अपने मत की समीचीनता प्रमाणित करने का प्रयास किया। इसके उल्लेख उपलब्धि है भाषा का संकेतात्मक, सिंबॉलिक तथा रागात्मक इमोटिव रूपों में विभाजन, जिनकी व्याख्या आगे की जाएगी। 1924 में रिचर्ड्स का द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, साहित्यिक आलोचना के सिद्धांत नामक ग्रंथ प्रकाशित हुआ, जिसने मनोविज्ञान पर आधारित आलोचना की एक नई पद्धति प्रस्तुत की। इस ग्रंथ में निरूपित सिद्धांतों के विनियोग से प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 का निर्माण हुआ। रिचर्ड्स के और भी अनेक ग्रंथ निकले, जैसे साइंस एंड पोएट्री 1924, द फिलोसफी ऑफ रेटारिक 1936 आदि, किंतु आलोचक के रूप में उनकी प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा दो ही ग्रंथों के कारण है, और वे हैं हिंदी द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म तथा प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। वाटसन ने ठीक ही कहा है कि इस ग्रंथ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के साथ रिचर्ड्स के अधिकांश प्रभाव की अवधि समाप्त हो जाती है। 1939 में रिचर्ड्स अमेरिका में बस गए और जीवन के अंत 1979 तक हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे। कोलरिज के समान रिचर्ड्स का ज्ञान भी व्यापक है। अर्थविज्ञान, मनोविज्ञान, मानव विज्ञान, सौंदर्य शास्त्र आदि का उन्होंने अपने सिद्धांत निरूपण में उन्मुक्त उपयोग किया। अर्थविज्ञान और मनोविज्ञान तो उनके उपजीव्य ही हैं, क्योंकि उनकी आलोचना पद्धति इन्हीं दो पर मुख्यतः आधारित है। साहित्येतर शास्त्रों के अतिशय और कुछ हद तक अनावश्यक प्रयोग में से रिचर्ड्स का विषय प्रतिपादन नीरस एवं जटिल हो गया है। इसमें उनकी अभिव्यंजना की नैसर्गिक दुरूहता की देन भी कम नहीं है। अपने प्रतिपादन की सूक्ष्मता और जटिलता से रिचर्ड्स स्वयं भी अनवगत नहीं है। सूक्ष्मता की उपमा उन्होंने स्वयं सहारा से दी है और कहा है कि जिस भाषा में कतिपय स्पष्ट कथन भी अभिव्यक्त है, वह भी अनावश्यक रूप में विकर्षक रिपेलेंट प्रतीत हो सकती है। द मीनिंग ऑफ मीनिंग के संबंध में कैरिंगटन ने जो कहा है कि वह प्रिंसिपल पर चिढ़ पैदा करने वाली है। इसमें अकारण और स्पष्टता है, जिससे ऐसी धारणा बनती है कि लेखक सुबोध ढंग से अपनी बात कहने के बदले पाठक को उसकी लघुता और अज्ञान का एहसास कराने में अधिक दिलचस्पी रखते हैं। फिर भी कुछ लोग रिचर्ड्स के लेखन को प्रांजल ल्यूसिड कहते हैं। निश्चय ही उनके ल्यूसिड का अर्थ प्रचलित अर्थ से भिन्न है। हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि रिचर्ड्स की दुर्बलता से आतंकित होकर भी बहुतों ने उनकी महत्ता स्वीकार कर ली है, अन्यथा उनके सिद्धांतों में खामियां कम नहीं है। हम वाटसन के इस कथन से सहमत है कि रिचर्ड्स के सिद्धांत भयंकर रूप से दोषपूर्ण है। प्रिंसिपल के प्रथम अध्याय का शीर्षक आलोचना सिद्धांतों की अराजकता, द गैसो ऑफ क्रिटिकल थ्योरीज, इसमें रिचर्ड्स ने अब तक की समस्त आलोचनात्मक उपलब्धियों को एक वाक्य में धूलिसात कर दिया। यह बिना अतिरंजना के कहा जा सकता है कि प्रचलित आलोचना सिद्धांत का निर्माण जैसे तत्वों से हुआ है वे हैं कुछ अनुमान भर्सनाओं का बाहुल्य, अनेक प्रखर असंबद्ध उक्तियां, कतिपय भव्य वितर्क, प्रचुर वक्तृता तथा अनुपयुक्त कविता, अपरिमेय मतभेद, कन्फ्यूजन, पर्याप्त मताग्रह, अनल्प पूर्वाग्रह, झक और सनक, रहस्यवाद का अतिरेक, किंचित यथार्थ कल्पना, नाना प्रकीर्ण अंतः प्रेरणाएं, अर्थ गर्भ संकेत एवं विश्रृंखल सार्क संकलन। कहने की आवश्यकता नहीं कि यवन यवन सुलभ आत्मविश्वास का प्रिंसिपल्स 30 वर्ष की उम्र की कृति है, उद्गार है, 2500 वर्षों की परंपरा को इतने हल्के फुल्के ढंग से नकारना परिणत बुद्धि के लिए संभव नहीं है। रिचर्ड्स का कहना है कि आलोचना विषय कुछ मौलिक प्रश्नों पर अब तक विचार ही नहीं हुआ है, जैसे कोई कविता पढ़ने पर उसकी अनुभूति का मूल्य क्या है, एक अनुभूति दूसरी अनुभूति से क्यों श्रेष्ठ है, एक चित्र की तुलना में दूसरे चित्र को क्यों पसंद किया जाए, संगीत कैसे सुना जाए कि उसमें व्यतीत क्षण सर्वाधिक मूल्यवान सिद्ध हो, किसी कलाकृति के संबंध में एक विचार दूसरे विचार की अपेक्षा क्यों अच्छा नहीं माना जाता। इन मौलिक प्रश्नों के साथ आलोचना से इन प्रारंभिक प्रश्नों के उत्तर भी अपेक्षा की जाती है कि चित्र कविता का या संगीत कहते ही किसे अनुभूतियों की तुलना कैसे की जा सकती है, मूल्य क्या है। इन्हीं से जुड़ा यह प्रधान प्रश्न भी अब तक अछूता ही है, कलाओं का मूल्य क्या है, ये वे सर्वोत्तम मनो के तीव्रतम क्षणों के साधना के योग्य हैं, युग मानव व्यापारों के समुदाय में उनका कलाओं का स्थान क्या है। रिचर्ड्स की धारणा है कि ये प्रश्न आज तक अनुत्तरित हैं। यह हमारी धारणा है कि रिचर्ड्स की यह धारणा अयुक्त है। प्रत्येक देश और प्रत्येक युग ने इन प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। काव्यशास्त्र के विकास का इतिहास इसका साक्षी है। हाँ, यह बात है कि उसमें आधुनिक मनोवैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग नहीं हुआ है। स्वयं रिचर्ड्स के सिद्धांत इस प्रश्नों का कहाँ तक समाधान कर पाए, हम आगे देखेंगे। मेरे विचार में आलोचना अनुभूतियों के पृथक्करण तथा मूल्यांकन का प्रयास है। यह हम तब तक नहीं कर सकते जब तक अनुभूतियों के स्वरूप का कुछ ज्ञान न हो अथवा मूल्यांकन एवं संप्रेषण के सिद्धांत न हो। रिचर्ड्स के आलोचना सिद्धांत का यह सार सूत्र है। इसके विश्लेषण के निम्नलिखित निष्कर्ष हैं। पहला, आलोचना के दो उद्देश्य हैं। एक तो कलात्मक अनुभूतियों का पृथक्करण, अर्थात किसी कलाकृति से मन में जो विभिन्न अनुभूतियां उत्पन्न होती हैं उनका अंतर समझना, और दूसरा उन अनुभूतियों का मूल्यांकन अर्थात तारतम्य निर्धारण, अर्थात यह देखना कि एक अनुभूति दूसरी अनुभूति से क्यों अच्छी या बुरी है, ये क्यों श्रेष्ठ या हीन है। दूसरा, इन उद्देश्यों की सिद्धि के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहली चीज तो यह है कि अनुभूति के स्वरूप का कुछ ज्ञान हो, क्योंकि उसके बिना अनुभूतियों का पारस्परिक भेद ही नहीं समझा जा सकता। जब तक स्वरूप ज्ञान नहीं तब तक भेद ज्ञान कैसे संभव है। दूसरी चीज यह कि जब मूल्यांकन करना है तो मूल्यांकन के कुछ सिद्धांत भी होने चाहिए। जैसे तौलने के लिए बाट आवश्यक, वैसे ही कलाकृति का मूल्यांकन निर्धारित करने के लिए भी कुछ सिद्धांत आवश्यक है। चूंकि कलाकार अपनी अनुभूति को किसी माध्यम की सहायता से दूसरों तक संप्रेषित कर उसके मन में वैसी ही अनुभूति या उत्पन्न करना चाहता है, इसलिए इस प्रक्रिया का अर्थात संप्रेषण का ज्ञान भी अपरिहार्य है। तात्पर्य की आलोचना के पहला उद्देश्य क, अनुभूतियों का पृथक्करण, ख, अनुभूतियों का मूल्यांकन, दूसरा साधन है, क, अनुभूतियों के स्वरूप का ज्ञान, ख, मूल्यांकन के सिद्धांत का ज्ञान, ग, संप्रेषण के सिद्धांत का ज्ञान। अनुभूति, मूल्य और संप्रेषण, इन तीनों के का संबंध मनोविज्ञान से है। मनोविज्ञान को उपजीव्य बनाने का कारण है आलोचना को वैज्ञानिक बनाने का आग्रह और वैज्ञानिकता का आग्रह, इसलिए कि वैज्ञानिक युग में कोई भी वस्तु तब तक स्वीकार्य नहीं हो सकती जब तक वह विज्ञान पर आश्रित न हो। रिचर्ड्स के लिए मनोविज्ञान ही विज्ञान है क्योंकि दूसरा कोई विज्ञान साहित्य आलोचन में उपयोगी नहीं हो सकता। मनोविज्ञान को विज्ञान मानते समय रिचर्ड्स यह भूल जाते हैं कि वह उस अर्थ में विज्ञान नहीं है जिस अर्थ में भौतिकी या रसायन विज्ञान का लक्षण है। कार्य कारण भाव की व्याप्ति अर्थात कारण विशेष में रहने पर कार्य विशेष अनिवार्यतः उत्पन्न हो। उदाहरण, हाइड्रोजन दो भाग और ऑक्सीजन एक भाग मिला देने पर जल बनता है। इस अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल बनेगा ही। कारण और कार्य की इसी व्याप्ति अर्थात नित्य संबंध पर विज्ञान निर्भर करता है, किंतु मनोविज्ञान में कारण कार्य की व्याप्ति सदा नहीं रहती, इसलिए वह अनुभाविक विज्ञान इम्पीरिकल साइंस कहलाता है। जैसे गुलाब का फूल देखने पर हर आदमी के मन में एक ही प्रकार की प्रतिक्रिया हो, यह आवश्यक नहीं। कोई उस पर मुग्ध हो सकता है, कोई हल्की सी प्रसन्नता व्यक्त कर सकता है, कोई तटस्थ रह सकता है। किसी की उंगली में कभी गुलाब का काटा चुभने से घाव हो गया तो गुलाब के प्रति वह अपनी अरुचि को व्यक्त कर सकता है। इसी प्रकार शास्त्रीय संगीत का तान आलाप सुनकर कोई तो झूम उठता है और कोई ऊँघने लगता है। तात्पर्य कि मनोविज्ञान के निष्कर्ष न तो सदा एक रूप होते हैं और न अभिव्यचरित निरपवाद, इसलिए वह सीमित अर्थ में ही विज्ञान है। आजकल जो राजनीति, समाज और शैली के साथ भी विज्ञान जोड़ दिया गया है, पर इतने से ही राजनीति विज्ञान, समाज विज्ञान और शैली विज्ञान नहीं बन जाते। हाँ, जिन्हें विज्ञान शब्द से मोह हो वे इससे मिथ्या संतोष भले ही कर ले। रिचर्ड्स ने मनोविज्ञान का जो पल्ला पकड़ा वह कुछ ऐसे ही मोह के वशीभूत होकर, उन्हें विज्ञान चाहिए था कर्मणा नहीं तो नामना ही सही, वह मनोविज्ञान में मिल गया और उसकी आधारशिला पर उन्होंने अपनी आलोचना का प्रसाद खड़ा कर लिया। मनोविज्ञान संबंधी इस आग्रह की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है जिसकी संक्षिप्त चर्चा आवश्यक है। प्रसिद्ध रोमांटिक कवि शैली 1992 से 1822 के एक मित्र थे टॉमस लव पिकॉक। पिकॉक स्वयं कवि थे और कवि से भी बढ़कर उपन्यासकार। व्यंग की प्रखरता उनकी विशेषता थी, विनोद और गंभीरता की मिलीजुली प्रेरणा से लिखित उनका एक प्रबंध 1820 में प्रकाशित हुआ, दी फोर एजेस ऑफ पोएट्री, कविता के चार युग। पिकॉक के अनुसार कालक्रम से काव्य के चार युग हुए, पहला लौह युग, दूसरा स्वर्ण युग, तीसरा रजत युग, चौथा पीतल युग। लौह युग का काव्य वास्तविक वीरों का अनगढ़ प्रशस्ति गान है। स्वर्ण युग के काव्य में पूर्वजों की गाथाओं का सिंहावलोकन है जिसे इतिहास का शैशव काल कह सकते हैं। रजत युग का काव्य या तो प्राचीन वीर गाथाओं का अनुकरण है या समसामयिक। पीतल युग में प्राचीनता को फिर से ग्रहण करने का विकृत प्रयास पाया जाता है। पिकॉक के अनुसार युगों का यह चक्र अनवरत चलता रहता है। प्राचीन युग में इतिहास और दर्शन का विकास काव्य के ह्रास का कारण बना और आधुनिक युग में विज्ञान का विकास काव्य के ह्रास का सबसे बड़ा कारण है। आज जब दर्शन और विज्ञान सत्य के अनुसंधान के समर्थ साधन के रूप में उपलब्ध है तब काव्य के मिथकों और स्वप्न चित्रों की क्या उपादेयता है। पिकॉक कहते हैं कि हमारे युग में कवि सभ्य समुदाय के अर्ध बर्बर हैं, वह अतीत में जीता है, उसके विचार भाव साहचर्य सभी बर्बर व्यवहारों, विलुप्त रीतियों और खंडित अंधविश्वासों से संबद्ध है, उसकी बुद्धि की गति केकड़े की तरह पीछे की ओर है। आगे चलकर पिकॉक कहते हैं चाहे किसी किसी मात्रा में काव्य का विकास परिष्कार क्यों न हो, उससे निश्चय ही किसी न किसी उपयोगी अध्ययन की उपेक्षा होगी। सचमुच यह देखकर गहरा खेद होता है कि जो मस्तिष्क श्रेष्ठतर वस्तुओं के योग्य है, वे बौद्धिक प्रयास की ऐसी खोखली निरुद्देश विडम्बनाओं की अर्थहीन अकर्मण्यता के बीज में बीज बोने के लिए भागदौड़ कर सकते हैं। नागरिक समाज के शैशव काल में काव्य मानसिक शोरगुल था जो बुद्धि का अवधान जगाने के काम में आता था, किंतु परिपक्व मस्तिष्क के लिए बचपन के खिलौने को गंभीर व्यवसाय बनाना वैसा ही हास्यास्पद है जैसा किसी सयाने का मूंगे से अपने मसूड़ों को रगड़ना या चांदी की घंटियों की झुनझुन से नींद बुलाने के लिए रोना। पिकाक के व्यंग की इस करारी चोट से कवि वर्ग ही नहीं आलोचक वर्ग भी विचलित होता। खतरा काव्य पर ही नहीं धर्म पर भी दिखाई पड़ने लगा। शैली ने डिफेंस ऑफ पोएट्री लिखकर पिकाक की काव्य विषयक मान्यताओं के खंडन की भूमिका प्रस्तुत की। इसके उसके बाद विज्ञान और काव्य के अपेक्षिक महत्व और उपयोगिता पर लिखने की परंपरा सी चल पड़ी। किसी ने कम लिखा, किसी ने अधिक लिखा, पर लिखा बहुतों ने। वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, अर्नाल्ड की आलोचना के प्रसंग में हम यह देख चुके हैं, पिकाक की चोट से साहित्यिक समुदाय इतना आविष्ट ऑब्सेस्ड रहा कि पूरी एक शताब्दी बीत जाने पर भी उसका असर कम नहीं हुआ। रिचर्ड्स का विज्ञान, वैज्ञानिकता आदि का बार बार नाम लेना बहुत कुछ ही परिणाम है। उसके उनके अचेतन में संभवतः पिकाक की भर्सना बैठी है। विज्ञान का आश्रय लेकर वे पिकाक की भर्सना से आलोचना की रक्षा करना चाहते हैं। विज्ञान का सामना करने से ही संभव है, यह सोचकर रिचर्ड्स अपनी आलोचना पद्धति को वैज्ञानिक आधार पर प्रतिष्ठित करने का शरम रचते हैं। चूंकि मनोविज्ञान को छोड़कर और कोई विज्ञान नामधारी विषय की विषय आलोचना में अधिक सहायक नहीं हो सकता, इसलिए वे मनोविज्ञान को पकड़ते हैं और अपनी आलोचना पद्धति को हर तरह से वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करते हैं। यही नहीं, अपनी धारणा को स्पष्टतर करने के लिए साइंस एंड पोएट्री 1926 नामक एक स्वतंत्र ग्रंथ भी लिखते हैं। हमारा ख्याल है कि पिकाक के विचारों से न तो इतना आतंकित होने की आवश्यकता है थी और न उन्हें इतना तूल देने की। पिकाक ने विज्ञान का सिर्फ एक हवा खड़ा कर दिया, अन्यथा उनके विचारों में ही कौन सी वैज्ञानिकता है। काव्य और संस्कृति को चार युगों में बांटना यादृच्छिक नहीं तो और क्या है। किसी एक व्यक्ति के कहने से काव्य का महत्व समाप्त नहीं हो जाता, और यदि काव्य सचमुच ऐसी छुई मुई है तो किसी दिन वह आपसे आप समाप्त हो जाएगा और किसी के बचाए नहीं बचेगा। अनेक समाजवादी देशों में धर्म के उखाड़ फेंकने की कोशिश हुई पर धर्म उखड़ा नहीं। वैसे ही विज्ञान के आक्रमण से काव्य और काव्य समस्त ललित साहित्य का उपलक्षण है निरस्त हो जाएगा। इस भय का कोई कभी कोई युक्ति संगत आधार नहीं है। गद्य के विकास में से काव्य का रंग सर्वत्र कुछ फीका पड़ गया है, पर फीका ही पड़ा और मीठा नहीं है, और उसका स्थान कहानी, उपन्यास, नाटक ने ले लिया है। ये काव्य के ही संगोत्र हैं। वैज्ञानिक आविष्टता के परिणाम स्वरूप ही कलानुभूति को विशिष्ट सौंदर्यात्मक मानसिक अवस्था मानने वाले दार्शनिकों तथा आलोचकों ने से रिचर्ड से सहमत नहीं है। वे सौंदर्यात्मक अवस्था एस्थेटिक स्टेट को मिरीचिका की संज्ञा देते हैं। कांट आदि दार्शनिकों और बहुसंख्यक सौंदर्यालोचकों की मान्यता है कि सौंदर्यानुभूति में एक विशिष्ट प्रकार की क्रिया होती है जो सामान्य से भिन्न हुआ करती है। कांट ने कला जन्म जन्य आनंद को निस्संग सार्वभौम अबौद्धिक बताते हुए कहा कि वह इंद्रिय भाव से भिन्न कोटि का आनंद है। तात्पर्य कि इंद्रिय आनंद लौकिक है किंतु कला जन्य आनंद अलौकिक अद्वितीय है। क्लाइव बेल जैसे सौंदर्य शास्त्री या ब्रैडले जैसे कलावादी इसी मत के समर्थक है। भारतीय काव्यशास्त्र की भी रसानुभूति काव्यानंद को अलौकिक की ही मानता है। रिचर्ड्स का तर्क है कि आधुनिक मनोविज्ञान में लौकिक और अलौकिक अनुभूति का भेद अमान्य है। मन की रचना ऐसी नहीं है उसमें कोई अनुभूति लौकिक रूप में हो और कोई अलौकिक रूप में, अलौकिक जैसे शब्द परंपरागत अमूर्त चिंतन की विरासत है। अतः वैज्ञानिक विचार में अग्राह्य है। वे कहते हैं कि जब हम कोई चित्र देखते हैं या कविता पढ़ते हैं या संगीत सुनते हैं, तब कुछ भी ऐसा नहीं करते जैसे जो गैलरी जाते समय या सुबह कपड़े पहनते समय ही नहीं कर रहे थे। अंतर यदि है तो केवल यही कि साधारण अनुभूतियों की तुलना में सौंदर्य की अनुभूति का संगठन अधिक सूक्ष्म होता है, किंतु वे नई और भिन्न कोटि की वस्तु बिल्कुल नहीं होती। आगे वे फिर कहते हैं, जिस रूप में अनुभूति हमारे भीतर उत्पन्न होती है वह भिन्न है, और नियमतः यह अनुभूति अधिक जटिल और यदि हम सफल हुए तो अधिक एक रूप होती है। हमारी क्रिया मूलतः भिन्न प्रकार की नहीं होती। वध यो व्याघात का यह अच्छा उदाहरण है। रिचर्ड्स एक ही सांस में दो परस्पर विरोधी बातें बार बार कह रहे हैं, पर मताग्रह के कारण इसे देख नहीं पाते। आप कहते हैं कि साधारण अनुभूतियों की अपेक्षा सौंदर्यात्मक अनुभूतियों का संगठन अधिक सूक्ष्म होता है, पर वे भिन्न कोटि की नहीं होती। अब भेद किसे कहते हैं? संगठन की सूक्ष्मता का भेद नहीं हो नहीं तो और क्या है? फिर आप कहते हैं कि सौंदर्यात्मक अनुभूति जिस रूप में हमारे भीतर उत्पन्न होती है वह सामान्य अनुभूति से भिन्न होती है, साथ ही सामान्य अनुभूति की तुलना में वह नियमतः अधिक जटिल होती है, किंतु जिस क्रिया भिन्न प्रकार की नहीं होती। उत्पत्ति के रूप में भेद ही है, संगठन में भेद है ही, सरलता जटिलता का भेद है ही। अब और क्या होता है? क्या होता है? तो आप भेद मानते हैं। आग और पानी का भेद ही भेद नहीं कहलाता। शास्त्र चर्चा में सूक्ष्म भेद भी महान भेद माना जाता है। जो भेद आप स्वयं स्वीकार करते हैं उन्हीं के लिए अन्य आचार्य अलौकिक शब्द का व्यवहार करते हैं। अलौकिक का अर्थ ही है कि वह लौकिक अर्थात सामान्य से भिन्न है। कपड़े पहनते समय की अनुभूति में क्या वही तन्मयता, वही आत्मविस्मृति है जो शेक्सपियर की कोई ट्रेजेडी पढ़ते या देखते समय होती है? और ने जो बात एक अलौकिक शब्द से कह दी है उसी के लिए आप अनेक शब्दों की व्यूह रचना कर पाठक को कथ्य तक पहुँचने से रोक रहे हैं। कला संबंधी अनुभूति सामान्य अनुभूति से भिन्न नहीं होती। वो यह प्रतिपादित कर रिचर्ड्स यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि अब तक आलोचना में जिस भाषा का प्रयोग होता रहा है वह भी त्रुटि रहित नहीं है। हाल तक भाषा प्रायः उन सारी वस्तुओं को हमसे छिपाने में ही सफल रही है जिनके विषय में हम बात करते हैं। एक वाक्य में समग्र वांग्मय के आलाप का यह साहस वस्तुतः प्रशंसनीय है। रिचर्ड्स के भाषा विवेचन के बाद भी अभिव्यंजना पद्धति में हमने कोई अंतर नहीं पाया। रिचर्ड्स का कहना है कि आलोचना के लिए ऐसे शब्दावली काम में लाई जाती हैं जो वक्तव्य को स्पष्ट करने के बदले और भी धूमिल कर देती हैं। ऐसे शब्द निर्माण, रूप, संतुलन, रचना, परिरूप, अन्विति, अभिव्यंजना जो सब भी कलाओं में प्रयुक्त होते हैं, इसी तरह काव्यालोचना में लय, बल, कथानक, चरित्र आदि शब्द प्रचलित हैं। इन शब्दों का व्यवहार इस रूप में होता है मानो वस्तुओं के ये आत्मगत धर्म हो। हम निरंतर इस तरह बात करते हैं मानो धर्म वस्तुओं में रहते हों, जबकि कथन का रूप वस्तुतः उचित है कि उनसे हमारे भीतर एक न एक प्रकार की प्रभाव का उत्पन्न होता है। किसी चित्र को देखने पर जहाँ कहना यह चाहिए कि वह हमारे भीतर ऐसी अनुभूति उत्पन्न करता है जो किन्हीं रूपों में मूल्यवान है, वहाँ हम यह कहा करते हैं कि अमुक चित्र सुंदर है। इस प्रकार के कथन से स्वभावतः ऐसी धारणा बनती है कि सौंदर्य वस्तु में रहता है जो गलत है। यह तर्क उपस्थित करते समय रिचर्ड्स भूल जाते हैं कि धर्मी धर्मी में अभेद होता है, सौंदर्य वस्तु निरपेक्ष धर्म नहीं है। यदि होता तो जो प्रभाव वस्तु विशेष से उत्पन्न होता है वैसे वही वैसे दूसरी वस्तुओं से क्यों नहीं उत्पन्न होता? ताजमहल को देखने से जो सौंदर्य अनुभूति होती है वही आगरे के रेलवे स्टेशन को देखने से क्यों नहीं होती? अथवा वैसी सौंदर्यात्मक प्रतिक्रिया ताजमहल से ही क्यों होती है? यदि कोई वस्तु से कोई विशेष प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है तो मानना पड़ेगा कि उसमें वह विशेषता धर्म है। रिचर्ड्स के तर्क का रूप कुछ बहुत कुछ ऐसा है कि आग जलाती तो है किंतु उसमें दहकता नहीं मानी जा सकती है। चित्र मूल्यवान अनुभूति उत्पन्न करता तो है किंतु उसे सुंदर नहीं कहा जा सकता। लियोनार्डो दा विंची की प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा से या अजंता के भित्ति चित्रों से जो मूल्यवान अनुभूति उत्पन्न होती है वही गांव की दीवारों पर अंकित रंगीन चित्रों से क्यों नहीं होती? शेक्सपियर के नाटकों में यदि कोई वैशिष्ट्य नहीं है तो वही अनुभूति दूसरे नाटककारों के नाटकों से क्यों नहीं जागृत होती? दूसरी चीज यह है कि रिचर्ड्स आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली की रिक्तता और निरर्थकता को तो सिद्ध करते हैं पर उनके अभाव में काम कैसे चलेगा इसका कोई निर्देश नहीं करते। यहाँ भी रिचर्ड्स विरोधाभास से नहीं बच पाते। वे एक ओर तो डिजाइन, फॉर्म, रिदम, एक्सप्रेशन आदि शब्दों को आलोचनात्मक चर्चा में शून्य वैस्क्यूआ से अधिक महत्व नहीं देते किंतु स्वयं इनका प्रयोग करते हैं, इन्हें अनिवार्य भी मानते हैं। दूसरी ओर यह भी कहते हैं कि स्पष्टता के लिए इनके बदले अधिक उपयुक्त शब्दों की आवश्यकता है पर वे उपयुक्त शब्द कभी सामने नहीं आते। तब ऐसा लगता है कि रिचर्ड्स केवल खंडन के आनंद के लिए खंडन करते हैं। रिचर्ड्स आलोचना के दो भेद करते हैं, आलोचनात्मक क्रिटिकल और प्राविधिक टेक्निकल। आलोचनात्मक क्रिटिकल में अनुभूति के मूल्य का वर्णन होता है और प्राविधिक टेक्निकल में अनुभूति के उत्पत्ति के साधनों का लय, छंद, तुक, अलंकार आदि का विचार प्राविधिक आलोचना के अंतर्गत आएगा। अनुभूतियों को उत्पन्न करने वाले साधनों के से संबद्ध सभी उक्तियां प्राविधिक हैं किंतु आलोचनात्मक उक्तियों का संबंध अनुभूतियों के मूल्यों से है, साथ ही उन तर्कों से भी है जिनकी सहायता से किसी अनुभूति को मूल्यवान या मूल्यहीन समझा जाता है। रिचर्ड से बड़ी स्पष्टता से कहते हैं कि आलोचनात्मक टिप्पणियां मनोवैज्ञानिक टिप्पणियों की शाखा मात्र हैं और मूल्य की व्याख्या के लिए न तो नैतिक एथिकल विचारों की आवश्यकता है और न तात्विक मेटाफिजिकल विचारों की। आलोचना को मनोविज्ञान की शाखा कहना न केवल उसके क्षेत्र को संकुचित करना है बल्कि उसके प्रयोजन को भी सीमित करना है। दूसरी चीज यह कि आलोचनात्मक तथा प्राविधिक भेद भी सार्थक नहीं है। बिना प्राविधिक के आलोचनात्मक निर्णय होगा कैसे? एक कृति से दूसरी कृति का गुणात्मक अंतर प्राविधिक पक्ष से ही तो स्पष्ट होता है। कथा शरीर एक होने पर भी क्यों रामचंद्रिका की अनुभूति वैसे मूल्यवान नहीं है जैसी रामचरितमानस की? जिन कारणों से उनके मूल्यों में अंतर होता है उन्हीं का विवेचन प्राविधिक पक्ष में आता है। छंद को ही ले ले, रामचरितमानस की कथा आरंभ से अंत तक चौपाई के प्रवाह में शांत स्मृति स्तिमित गति से आगे बढ़ती जाती है जिसके साथ पाठक की अनुभूति भी निर्बाध रहती है। इसके प्रतिकूल रामचंद्रिका में हर कदम पर छंद परिवर्तन से अनुभूति धक्के खाती रहती है, उसे कभी एकतान होने का अवसर नहीं मिलता। इसलिए प्राविधिक पक्ष को बहिरंग एक्सट्रिनिक या एक्सटर्नल कहना आलोचना को एकांगी बनाना है। प्राविधि और मूल्य अन्योन्याश्रित है। मूल्य सिद्धांत, ए थ्योरी ऑफ वैल्यू, रिचर्ड्स के अनुसार आलोचना के दो आधार स्तंभ है। पहला मूल्य का लेखा, अकाउंट ऑफ वैल्यू, दूसरा संप्रेषण का लेखा, अकाउंट ऑफ कम्युनिकेशन। मूल्य का मूल्य मूलतः अर्थशास्त्र या जो कहें कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था का शब्द है, किंतु इसका क्षेत्र विस्तार हो गया है। अर्थशास्त्र से इसका प्रवेश दर्शन शास्त्र में हुआ है, फिर मनोविज्ञान में, और मनोविज्ञान से साहित्य में। कुछ दार्शनिकों ने दर्शन शास्त्र में मूल्य के अन्वेषण को 19वीं शताब्दी की महत्तम उपलब्धि माना है। मूल्य की सामान्य परिभाषा यह है कि मूल्य किसी वस्तु का वह धर्म गुण है जिसमें उसका परिसंशन अथवा रुचि निहित हो। अर्थात कोई वस्तु यदि हमें रुचिकर प्रतीत होती है, पसंद आती है तो वह हमारे लिए मूल्यवान है। ऐसी रुचि या पसंदगी का संबंध प्रथमतः अनुभूति से होता है और अंततः इच्छा तथा प्रवृत्ति से। अर्थात किसी वस्तु की इच्छा हुई, फिर उसे प्राप्त करने की प्रवृत्ति हुई, प्राप्त होने पर रुचिकर या प्रीतिकर अनुभूति हुई तो वह हमारे लिए मूल्यवान बन जाएगी। तात्पर्य कि मूल्य और अनुभूति पर्याप्त है। मूल्य और मूल्य की अनुभूति में कोई भेद नहीं है। यही मूल्य की मनोवैज्ञानिक धारणा है और इस आधार पर जिस मूल्य सिद्धांत का विकास हुआ है उसे ही मनोवैज्ञानिक मूल्य सिद्धांत कहते हैं। मूल्य अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे आर्थिक, नैतिक, धार्मिक, राजनीतिक, सौंदर्यात्मक आदि। मूल्य के विचार का क्षेत्र इतना व्यापक हो गया है कि मूल्य मीमांसा एक्सोलॉजी नामक एक स्वतंत्र शास्त्र विकसित हो गया है। रिचर्ड्स के मूल्य सिद्धांत को समझने के लिए उनके द्वारा परिकल्पित मानसिक प्रक्रिया का ज्ञान आवश्यक है। जैसा हम देख चुके हैं, रिचर्ड्स आलोचना को मनोविज्ञान की एक शाखा मात्र मानते हैं। स्वभावतः उनके मूल्य सिद्धांत की सारी परिकल्पना मनोविज्ञान पर आधारित है। इस संबंध में एक बात ध्यान में रखने की आवश्यक रखने ही की है। मनोविज्ञान शब्द किसी एक सुनिश्चित